नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जापान की टेक्नोलॉजी और भारत की प्रतिभा मिलकर इस सदी की तकनीकी क्रांति का नेतृत्व कर सकते हैं। श्री मोदी ने कहा, भारत ने एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग और अंतरिक्ष क्षेत्र में महत्वाकांक्षी पहल की है। बिहार मंत्रिमंडल ने प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नई योजना को मंजूरी दी। हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती पर आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग और चमोली में बादल फटने से व्यापक तबाही। जम्मू कश्मीर में लगातार चौथे दिन रेल यातायात ठप, आज 40 ट्रेनें रद्द। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जापान की टेक्नोलॉजी और भारत की प्रतिभा मिलकर इस सदी की टेक क्रांति का नेतृत्व कर सकते हैं। टोक्यो में जापान आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जापान टेक्नोलॉजी का और भारत प्रतिभा का पावर हाउस है।
जापान टेक पावर हाउस है और भारत एक टैलेंट पावर हाउस है। भारत ने एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक और स्पेस में बोल्ड और एम्बिशियस इनिशिएटिव लिए हैं। जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलकर इस सदी के टेक रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र के बाद भारत परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के दरवाजे निजी क्षेत्र के लिए खोल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत निवेश के सबसे भरोसेमंद बाजार के रूप में विकसित हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की कंपनियों ने भारत में 40 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है।
जापानी कंपनियों ने भारत में 40 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है। मात्र पिछले दो वर्षों में 13 बिलियन डॉलर का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है। जेबीआईसी कहता है कि भारत सबसे प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन है। जेट्रो बताता है कि 80% कंपनियां भारत में एक्सपांड करना चाहती हैं और 75% ऑलरेडी मुनाफे में है। यानी इन इंडिया कैपिटल डज नॉट जस्ट ग्रो, इट मल्टीप्लाइज।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जल्द ही भारत दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि आज भारत में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता तथा नीतियों में पारदर्शिता है।
आज भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। वैश्विक ग्रोथ में भारत 18% योगदान दे रहा है। भारत की कैपिटल मार्केट्स में अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। एक मजबूत बैंकिंग सेक्टर भी है। लो इन्फ्लेशन और लो रेट्स, लो इंटरेस्ट रेट्स, करीब 700 बिलियन डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व है।
इस अवसर पर जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने कहा कि जापान की उन्नत प्रौद्योगिकी और भारत की विशिष्ट प्रतिभा एक दूसरे के पूरक हैं, जो हमारे आर्थिक संबंधों का विस्तार करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की कंपनियों के बीच सहयोग के दस्तावेज पर हस्ताक्षर होना भारत में और निवेश के लिए जापान की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को स्कोप एमिनेंस पुरस्कार 2022-23 प्रदान किए। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आर्थिक और वित्तीय योगदान के अलावा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने राष्ट्रीय लक्ष्यों को महत्व देते हुए संतुलित और समावेशी विकास को प्राथमिकता दी है। इस अवसर पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं और वैश्विक मंच पर पहचान बना रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने असम के गुवाहाटी में आज राजभवन की नवनिर्मित ब्रह्मपुत्र शाखा का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने गोलाघाट में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने सशस्त्र बलों के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और शुभारंभ भी किया। श्री शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ब्रिटिश शासनकाल की भारतीय दंड संहिता को समाप्त करके 3 नए कानून लेकर आई।
हमने अंग्रेजों के बनाए हुए 3 कानूनों को समाप्त कर आपराधिक न्याय प्रणाली के 3 नए भारतीय कानूनों को इंट्रोड्यूस किया है और उसमें विज्ञान के आधार पर FSL के आधार पर पुलिस की जांच और गुनहगारों को सजा दिलाने का प्रयास, इस पर अहम बल दिया है।
नई दिल्ली रवाना होने से पहले श्री शाह ने आज असम के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री गोलाब बोरबोरा के जन शताब्दी से जुड़े साल भर चलने वाले समारोह का शुभारंभ करेंगे। बिहार सरकार ने महिलाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए एक नई योजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। वित्तीय मदद की पहली किस्त में चुने गए प्रत्येक महिला को अपना रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रूपये दिए जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती पर आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है।
मेजर ध्यानचंद को यूं ही हॉकी का जादूगर नहीं कहा जाता। उनके अद्भुत खेल प्रदर्शन से प्रभावित होकर जर्मनी के एडोल्फ हिटलर ने उन्हें जर्मनी की ओर से हॉकी खेलने की पेशकश की, लेकिन दद्दा ने हमेशा मातृभूमि भारत के लिए ही अपने खेल कौशल को समर्पित किया। गेंद इस कदर उनकी हॉकी स्टिक से चिपकी रहती थी कि सभी को भ्रम होता था कि वे कोई जादुई स्टिक लेकर मैदान में तो नहीं उतरे, जिस पर से बॉल है कि छूटती ही नहीं। यहां तक कि हॉलैंड में उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने की आशंका में उनकी स्टिक को तोड़कर भी देखा गया। जापान में भी उनकी हॉकी स्टिक में गोंद लगे होने की बात कही गई। मेजर ध्यानचंद की गिनती दुनिया भर के महानतम हॉकी खिलाड़ियों में से होती है। उन्होंने अपने जीवन में 1,000 से अधिक गोल किए। ध्यानचंद 3 बार ओलंपिक में हॉकी स्पर्धाओं में भारत को स्वर्ण पदक जिताने वाली टीम में शामिल रहे। इनमें वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम में, वर्ष 1932 में लॉस एंजल्स में और वर्ष 1936 में बर्लिन में हुए ओलंपिक खेल शामिल हैं। So 1932 के लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में जब भारत ने अमेरिका को 24-1 से हराया तो एक अमेरिकी अखबार ने लिखा कि भारतीय हॉकी टीम तो पूर्व से आया कोई तूफान थी। उसने अपने वेग से अमेरिकी टीम के 11 खिलाड़ियों को ध्वस्त कर दिया। भारत सरकार ने मेजर ध्यानचंद को वर्ष 1956 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर हॉकी इंडिया ने एथलीट केंद्रित ई सुधारों की श्रृंखला शुरू की है।
इन प्रमुख पहलों में खिलाड़ियों के लिए डिजिटल पहचान पत्र जारी करना, पंजीकरण और सत्यापन प्रक्रियाओं को सरल बनाना शामिल है। ये पहचान पत्र हॉकी इंडिया सदस्य इकाई पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते हैं। हॉकी इंडिया ने डिजी लॉकर को भी पूरी तरह से एकीकृत कर दिया है, जिससे हॉकी इंडिया राष्ट्रीय चैंपियनशिप के सभी प्रमाण पत्र खिलाड़ियों को उपलब्ध होंगे। इनमें पिछले 5 वर्षों के प्रमाण पत्रों को भी प्राप्त किया जा सकता है। एक और डिजिटल प्लेटफॉर्म एथलीट प्रबंधन प्रणाली को खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर रखने और टूर्नामेंट डेटा का प्रबंधन करने के लिए शुरू किया गया है। हॉकी इंडिया ने खिलाड़ियों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय टीम के बेरोजगार खिलाड़ियों को 2,00,000 रुपए के अनुदान देने की घोषणा की है। आलोक की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि ये अतीत से प्रेरणा लेने का दिन है।
राष्ट्रीय स्पोर्ट दिवस स्वर्गस्थ मेजर ध्यानचंद जी के जीवन से प्रेरणा लेने का दिवस है। हमारे देश के स्पोर्ट्स कल्चर को जीने का दिवस है। 1936 जब मेजर ध्यानचंद जी जर्मनी में जब ओलंपिक्स के खेल के मैदान में उतरे थे और उनकी स्टिक और बॉल ने जो कमाल करा था, उस वक्त हिटलर भी ये मैच देखने के लिए आए थे और उसकी स्पोर्ट्स स्पिरिट को देख के उन्होंने भी उसकी प्रशंसा करी। स्पोर्ट्स हमारे लिए केवल मेडल नहीं है, स्पोर्ट्स हमें अनुशासन भी सिखाता है, स्पोर्ट्स एक स्पिरिट है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने दिग्गज हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा के प्रयोग की कड़ी निंदा की है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को लेकर दरभंगा और पटना में कई जगहों पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका और ब्रिटेन के शोधकर्ताओं की एक वैश्विक टीम ने एक नया ऑनलाइन टूल विकसित किया है जो उच्च रक्तचाप के प्रबंधन के तरीके को बदल सकता है। इससे डॉक्टर प्रत्येक मरीज के लिए उसके रक्तचाप को कम करने की आवश्यकता के आधार पर उपचार चुन सकेंगे। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी इंजीनियरिंग छात्रों के इंजीनियर्स राइट्स मूवमेंट ने कहा है कि सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में उनका चल रहा पूर्ण बंद अगली घोषणा तक जारी रहेगा। समूह के अध्यक्ष मोहम्मद वली उल्लाह ने कल ढाका में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स में एक संवाददाता सम्मेलन में ये घोषणा की। ये विरोध प्रदर्शन बुधवार को ढाका में हुई झड़पों के बाद हो रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी हैं। उत्तराखंड के कई जिलों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर जिलों के सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र आज बंद कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी सक्रिय मानसून से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जम्मू और कश्मीर में जम्मू संभाग में रेल यातायात प्रभावित हुआ है। जम्मू से आने जाने वाली 40 रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया गया है। प्रदेश में सड़क संपर्क भी प्रभावित हुआ है।
अचानक आई बाढ़ और मिट्टी के कटाव के बाद पुल संख्या 17 पर कठुआ माधोपुर पंजाब डोन लाइन पर रेल यातायात पूरी तरह से स्थगित है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 270 किलोमीटर लंबा हिस्सा उधमपुर जिले में जखैनी और चनैनी के बीच कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण बंद है। मौसम विभाग ने आज कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान लगाया है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैना।
जम्मू संभाग के सभी सरकारी और निजी स्कूल भी कल तक बंद रहेंगे। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु BWF विश्व चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल मैच खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए उनका सामना पेरिस के एडिडास एरिना में इंडोनेशिया की पुत्री कुसुमा वरदानी से होगा। पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना दूसरी वरीयता प्राप्त मलेशिया की आरुण चिया आरसो वही की जोड़ी से होगा। एशिया कप हॉकी के उद्घाटन मैच में आज बिहार में मलेशिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को 4-1 से हरा दिया। भारत आज अपना पहला मैच चीन के साथ खेलेगा। भारतीय शेयर बाजार आज दोपहर के कारोबार में सपाट काम कर रहे थे। सेंसेक्स 29 अंक बढ़कर 80,109 पर और निफ्टी 24 अंक बढ़कर 24,508 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जापान की टेक्नोलॉजी और भारत की प्रतिभा मिलकर इस सदी की तकनीकी क्रांति का नेतृत्व कर सकते हैं। श्री मोदी ने कहा, भारत ने AI, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग और अंतरिक्ष के क्षेत्र में महत्वाकांक्षी पहल की है। बिहार मंत्रिमंडल ने प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नई योजना को मंजूरी दी। हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग, चमोली में बादल फटने से व्यापक तबाही। जम्मू कश्मीर में लगातार चौथे दिन रेल यातायात ठप, आज 40 ट्रेन रद्द। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी क्वार्टर फाइनल मैच आज खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।